Hi investors, welcome to SOIC. So in today's video, we will be learning six main important things जो आपको home loan की जितनी भी queries है वो इस six key learnings में आपके पूरे solve हो जाएंगे. First thing that we will be learning is how home loan can become a nightmare. In this video, I will be sharing कि मेरे friend के साथ एक story मैं share करूँगा कि क्या हुआ and how home loan can become a nightmare for you. जो आप जब home loan लेते हैं तब आप ये चीज़ नहीं सोचते. Second, सबसे major doubt जो आता है कि जब मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है क्या मुझे एनुअल बोनसेस मिले, राइट? तो मैं उस सैलरी से SIP जो इंक्रीमेंट हुआ है मेरा उससे SIP करूँ म्यूचुअल फंड में, क्या प्रीपेमेंट ऑफ लोन करूँ? क्या मेरे पास एनुअल बोनस आया है तो मैं उसके साथ प्रीपेमेंट ऑफ लोन करूँ क्या म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करूँ? थर्ड की थिंग दैट वी विल बी लर्निंग इज जो बड़ा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैंने हाफ ऑफ द टेन्योर में होम लोन पेमेंट कर चुका हूँ तो इसका मतलब मेरा हाफ ऑफ द कैपिटल पेमेंट करना है बस मुझे. आंसर इज नो. सो इन टूडेज क्लास वी विल बी लर्निंग कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मिडल ऑफ द होम लोन में ऐसा लगता है लोगों को कि हाफ ऑफ द पेमेंट हो चुकी है. सो हम इस क्लास में ये सीखेंगे ऐसा नहीं है. द फोर्थ की लर्निंग वुड बी कि आपको होम फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट में डिफरेंस पता होना चाहिए. सेकंड कि जब आपने पेमेंट कर दिया तो आपको जो कोलैटरल के पेपर्स आपके होम लोन के पेपर्स है वो आपको बैंक कितने दिनों में दे देगा. एंड तीसरी चीज़ हम ये भी सीखेंगे होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है एंड होम लोन ट्रांसफ़र जो आपकी राइट है वो आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड लास्ट की लर्निंग वी विल बी लर्निंग जो सबसे बिगेस्ट लर्निंग होगी इस वीडियो की जो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें आई वुड बी शेयरिंग इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट योर EMI? फर्स्ट इज लोन अमाउंट. द हायर द लोन अमाउंट दैट यू हैव हायर वुड बी द EMI. सेकेंड द इंटरेस्ट रेट कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है. ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा आपका तो आपका EMI ज़्यादा होगा एंड इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इंटरेस्ट EMI आपका कम होगा. थर्ड इज द लोन अमाउंट. द थर्ड इज रीपेमेंट टेन्योर. रीपेमेंट टेन्योर मीन्स कि आपने बैंक से कितने सालों के लिए होम लोन लिया है. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन होम लोन फॉर 20 ईयर्स. इफ़ द अमाउंट इज 50 लैक्स तो 20 ईयर्स में आपका EMI फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट है. बट अगर आपने होम लोन 50 लैक्स का 30 ईयर्स के लिए लिया है तो ऑब्वियसली आपका EMI दैट वुड बी लेस बट द टोटल आउटपे ऑफ इंटरेस्ट वुड बी मोर, राइट? एंड फोर्थ जो इनडायरेक्ट फैक्टर है दैट इज़ आप कितना प्रीपेमेंट आप कितना डाउन पेमेंट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल 50 लैक्स में से मैंने 10 लैक्स डाउन पेमेंट कर दिया तो आपका EMI वुड बी लेस. सो दीज आर द फोर की फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द EMI. फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट, सेकेंड इज लोन अमाउंट, थर्ड इज लोन टेन्योर एंड फोर्थ इज डाउन पेमेंट. एंड हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि ये कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है ओवर द लॉन्ग रन. सो फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ EMI इंक्रीज. सो EMI को इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट मंथली भी बोलते हैं, राइट? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट दैट इज EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. सो आई फॉलो दिस इन्वेस्टर, इनका ट्विटर चैनल है फ्रॉम स्टेबल इन्वेस्टर. ही पुटेड कि जैसे जो मैंने फर्स्ट लर्निंग बताई थी हाउ होम लोन कैन बिकम अ नाइटमेयर एज वेल, देर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो रिसेंटली हुआ अभी मतलब 2022 का यूज केस है कि आपने 50 लाख का होम लोन लिया एट ओरिजिनली एट 7%. सो इसमें क्या है आपका जो लोन अमाउंट है दैट इज़ 50 लाख रुपीस, राइट? दैट इज़ 50 लाख रुपीस एंड आपने जो इंटरेस्ट रेट लगा आपका वो 7% था, वो आपका 7% था तो आपका EMI इज़ 44,000 रुपीस. बट जस्ट सी लिटिल बिट इंक्रीज इन योर इंटरेस्ट हाउ इट इम्पैक्ट्स योर EMI. तो जैसे ही इंटरेस्ट 7 से 7.40 हुआ, जस्ट सी EMI 46,000, देन फिर से रेट हाइक हुआ एंड जो इंटरेस्ट रेट था वो 7.90 हो गया तो 47,000 रुपीस. देन थर्ड रेट हाइक हुआ दैट इज़ 8.40 तो 48,000 रुपीस. सो बेसिकली मतलब जो रेट हाइक फोर्थ था दैट इज़ सितंबर 2022, मतलब ये रिसेंटली एग्जांपल है, ये नहीं कि बहुत टाइम से और हमारे साथ नहीं होगा, ये जस्ट रीसेंट एग्जांपल है कि ये 8.9 हुआ तो जो आपकी 44,000 रुपीस की EMI थी वो 50,000 रुपीस की हो गई. जस्ट इमेजिन, राइट? तो हाउ होम लोन कैन बिकम अ नाइटमेयर. तो फर्स्टली अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स नहीं है, क्या आपने एकदम नेक टू नेक EMI करवा ली जितनी आपकी सैलरी है, तो हायर द चांसेस ऑफ फेलियर एज वेल. तो फॉर एग्जांपल EMI 45,000 से 50,000 हो गया, राइट? सेकंड जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, ही डज नॉट वांट टू इंक्रीज हिज EMI राइट, तो उन्होंने सेकेंड ऑप्शन क्या किया, अपना होम लोन टेन्योर बढ़ा लिया। तो जस्ट इतने बड़े इंक्रीज से कितना बड़ा टेन्योर इंक्रीज हो जाता है, मतलब उसने जो तो सोचा था कि फ्रॉम मतलब 50-60 ईयर्स में ही विल बी एबल टू पे ऑफ, अब उसे 70-75 ईयर्स तक उसको वो होम लोन अपने साथ कैरी ऑन करना पड़ेगा। सो जस्ट इमेजिन, सो दिस होम लोन कैन बिकम अ नाइटमेयर एज वेल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज से कितना इम्पैक्ट आता है ईएमआई में, और हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपने ईएमआई अमाउंट नहीं बढ़ाया तो हाउ मच इट विल इम्पैक्ट इन द मंथ्स, कि आपको कितना और टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। सेकेंड केस पे जाते हैं कि एक एग्जाम्पल है, डैट इज 50 लाख होम लोन लिया हुआ है हमने एंड 8% पे लिया हुआ है एंड फॉर 25 ईयर्स। तो जो पहली मंथली ईएमआई होगी वो आपकी होगी 38,591। तो सिंपल है, टोटल एनुअल ईएमआई, मतलब हमने मंथली ईएमआई इनटू 12 कर दिया, तो टोटल आउटफ्लो आपका ईयरली क्या होगा, 4,63,000, राइट। पर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स है उसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेड होता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेड होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4,63,000 बैंक को दिए ये सोच के कि इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी हो रहा है पर मेरा इंटरेस्ट अमाउंट भी हो रहा है, पर आप अगर देखोगे तो 4 लाख के करीब, ऑलमोस्ट 4 लाख, मतलब 3,97,635 रुपीज़ ये खाली इंटरेस्ट दिया आपने बैंक को, एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना हुआ है आपका फर्स्ट ईयर में, दैट इज़ ओनली 65,000 रुपीज़। तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन ईयर वन पे ये नहीं होगा कि 50 लाख माइनस 4 लाख, आंसर इज़ नो, योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 49,34,545। इवन इफ़ यू सी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो जैसे जैसे मतलब ईयर्स निकलते जाएंगे ऑब्वियसली जो आपका इंटरेस्ट है उसमें कम होगा, बट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर में आपने लोन खाली जो प्रिंसिपल लोन है वो खाली 1.3%, सेकेंड ईयर में 2.7%, थर्ड ईयर में ओनली 4.3%, रेस्ट यू हैव मेड जस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फिफ्थ ईयर में 7.7%। तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ कि सार्थक मैंने 50 लाख का होम लोन लिया था, मुझे मेरा टेन्योर 25 ईयर्स था, तो 12 ईयर्स पे मेरा 50% तो हो ही चुका है, अब खाली मुझे 25 लाख रुपए तो देने हैं, आंसर इज़ नो। जस्ट सी 12th ईयर पे, क्या इसको आप 13 ऑफ स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, 12th ईयर पे आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे खाली 25 लाख देना है, नो, आपको 37 लाख रुपीज़ देना है, 37 लाख रुपीज़, बिकॉज स्टार्टिंग में आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे थे। सो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि मेरा 50% होम लोन पे हो चुका है, आंसर इज़ नो, आपका खाली 25% होता है, ओनली यू हैव पेड ओनली 25%। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बेसिक समझे सो डैट बाद में हमें दिक्कत ना आए। इवन इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, जब आप ये वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे तो इसमें भी यूज़ केस ये है कि 40 लाख का होम लोन लिया था हमने, 25 ईयर्स का टेन्योर एंड 9.50 इंटरेस्ट था। तो जस्ट सी, जो आपने फर्स्ट ईयर में पेमेंट करी है उसमें से ओनली 10% गया है प्रिंसिपल में और 90%, एंड जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते रहेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा उस ईएमआई में एंड इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी इसमें कि हमने खाली 40 और 50 लाख होम लोन पे एग्जांपल दिए, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि आजकल जो घर के प्राइजेज है वो 1 CR 2 CR, तो आपका होम लोन ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो हाउ इट कैन बिकम अ नाइटमेयर इफ़ यू डू नॉट नो ऑल दिस। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि आपको ये अवेयरनेस हो, एंड बाद में हम ये सीखेंगे कि ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से आप कैसे इसको कम भी कर सकते हैं, राइट। सो मैं इसका 1 month का भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ, सो डैट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर। सो 1 month में सेम एग्जाम्पल, हमने 50 लाख का होम लोन लिया हुआ है, तो पहले में आपने जो मंथली ईएमआई दी है 38,591, तो इसमें से प्रिंसिपल रीपेमेंट खाली 5,000 रुपीज़ है और इंटरेस्ट 33,000 रुपीज़ है, राइट। दैट इज़ अ फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, तो लास्ट में जो 12th मंथ वाली होती है उसमें प्रिंसिपल 5,656 का होता है एंड इंटरेस्ट 32,000 होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो 85% जो आपका टोटल, फॉर एग्जांपल ईएमआई 100 रुपीज़ है, तो 85% तो आप इंटरेस्ट ही दे रहे होते हैं, राइट। So it is very important to understand these concepts. And now I will be telling you कि छोटे अमाउंट से भी जो प्रीपेमेंट करके आपको कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है. एंड वाइल प्रिपेयरिंग दिस स्लाइड आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि छोटे छोटे अमाउंट से, मतलब कभी इंक्रीमेंट होता है, हम इंक्रीमेंट पे क्या करते हैं, आईफोन ले लेते हैं क्या, हम पार्टीज और एक्सपेंडिचर्स बढ़ा लेते हैं अपने, राइट. बट हाउ दिस नॉलेज कैन हेल्प यू टू मेक होम लोन, मतलब बेटर ऑप्टिमाइज आप कैसे कर सकते हैं, एंड जस्ट स्मॉल इन मतलब प्री पेमेंट करके. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लाख होम लोन है एंड 25 ईयर्स का टेन्योर है. सो सेम एग्जाम्पल वी आर कैरिंग ऑन. तो अगर आप इसमें कोई भी प्री पेमेंट नहीं करते तो आपका टोटल इंटरेस्ट पेड 65 लाख रुपीज़ होता. बट अगर आप प्री पेमेंट 5 लाख कर देते फर्स्ट ईयर में तो आपका टोटल इंटरेस्ट पेड ओनली 42 लाख होता, राइट. ऐसे ही अगर प्री पेमेंट आप 5 लाख कर देते सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में आप कुछ नहीं करते तो भी आपको आपका 44 लाख जाता. वेयर एज आपका अगर नो प्री पेमेंट, कोई भी प्री पेमेंट नहीं करोगे तो आपका 65 लाख रहेगा, राइट. अगर आप 8th ईयर में, आप ये बोलते हो 60 हज़ार फिर तो मैं EMI बढ़ा लेता ना अगर इतना पैसा होता. बट इमेजिन आपने 8th ईयर में प्री पेमेंट किया है, राइट, 5 लाख का, तो भी आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 53 लाख का होता है. एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल सेविंग, यू वुड एंड अप सेविंग 12 लाख रुपीज़, राइट. 65 माइनस 53, राइट, 12 लाख रुपीज़ यू वुड हैव सेव्ड. सो मतलब दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री पेमेंट. एंड आई रियली थिंक दैट यू शुड बी अवेयर कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब हाउ इट इम्पैक्ट्स, राइट. सो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, सो प्री पेइंग 5 लाख इन द फर्स्ट ईयर इट विल रिजल्ट इन सेविंग्स ऑफ 23 लाख, राइट. बट प्री पेइंग ऑन द 10th ईयर द सेम अमाउंट, दैट इज 5 लाख रुपीज़, तो आपके 10 लाख रुपीज़ तो भी सेफ हो रहे हैं, आपके 10 लाख रुपीज़ तो भी सेफ हो रहे हैं, राइट. 10 लाख रुपीज़ आपके तभी भी सेफ हो रहे हैं. सो अगर आपने ये 5 लाख रुपीज़ प्री पेमेंट किया होता 10th ईयर पे तो आपके तभी भी 10 लाख रुपीज़ सेव हो रहे होते, राइट. एंड इसके साथ थोड़ा और देखते हैं कि अगर आपने एडिशनल 5000 मंथली प्रीपे कर रहे होते तो मतलब प्री पेमेंट की कितना मेजर इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ. कि अगर आप खाली 5000 रुपीज़ आपका सैलरी इंक्रीज हुआ है और आप 5000 रुपीज़ की प्री पेमेंट करते हैं एवरी मंथ, तो जो सेम लोन है वो 25 ईयर्स का था, राइट, अब वो खाली 16 ईयर्स का बच जाएगा, राइट. एंड मतलब और आपका खाली 40 to 41 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट लगता, ना कि 70 to 71 लाख, राइट. सो जो बिगेस्ट लर्निंग है, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में से जो आपको सबसे बिगेस्ट लर्निंग है वो ये है, नो अमाउंट इज़ टू स्मॉल व्हेन यू प्री पे, नो अमाउंट इज़ टू स्मॉल व्हेन यू प्री पे, राइट. सो ये मत सोचना कि यार मतलब 5000, 10000 क्या 1 लाख रुपीज़ से क्या ही हो जाएगा मेरे 50 लाख होम लोन पे, राइट. सो हाउ इट कैन हैव एन इम्पैक्ट वो इस हम सीख चुके हैं, राइट. सेकेंड इज़ इफ़ यू प्री पे एन एडिशनल 1 लाख रुपीज़ वंस अ ईयर, देन ऑल्सो आपका होम लोन 14 ईयर्स में हो जाता, नहीं तो आपको वो 25 ईयर्स तक करना पड़ता, राइट. एंड नाउ जो मैंने पहले केस स्टडी में ये सीखा था हमने कि हमने EMI इंक्रीज़ करवा दी थी, राइट, बट एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टू इंक्रीज़ द EMI. तो दूसरा ऑप्शन क्या करता है बैंक, आपका होम लोन टेन्योर इंक्रीज़ कर देता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्क्रीनशॉट दैट आई हैव टेकन, मतलब वेरी गुड इंसाइट वी कैन गैदर कि 20 ईयर होम लोन विल टेक 31 ईयर्स टू रीपे. कैसे हुआ ये, मतलब हमने लिया तो 20 ईयर्स के लिए था पर अब 31 ईयर्स लग रहे हैं. वाई, बिकॉज जब ये इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ 6.7 से 7.1, तो मैंने बैंक को बोला कि नहीं मेरा आप EMI मत बढ़ाओ, मेरा होम लोन टेन्योर बढ़ा दो, तो क्या होगा, मेरा 1 ईयर अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट. मतलब बेसिकली मुझे 12 EMIs एडिशनल देनी पड़ेगी बैंक को जस्ट विद द इंक्रीज ऑफ 0.4% इंटरेस्ट. अगर ये हुआ भी था, जो हमने देखा अभी रिसेंटली एग्जांपल में कि 6.7 से 7.6 हो गया, तो आपको एडिशनल EMI कितनी देनी पड़ेगी, 29 EMIs. ये जैसे ही 8.1 हुआ तो आपको 49 EMIs ज़्यादा देनी पड़ी. एंड लास्ट में जो 9.25 हो गया अभी, ये तो आपको 132 EMIs ज़्यादा देनी पड़ी, राइट. So this is why home loan can become a nightmare as well. So it is very important कि हमें ये concepts पता हो और हम मतलब जब भी home loan ले रहे हैं तो हम ये चीज़ भी सोचे. So main purpose of this video ये ही है कि आपको मैं aware कर पाऊँ. So now coming to very interesting point, जो सबसे बड़ी battle होती है कि मैं prepayment करूँ क्या, मैं होम लोन मतलब म्यूचुअल फंड में SIP और लमसम करूं. तो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस केस स्टडी एंड यू विल गेट अ डेफिनेट आंसर. बट इसमें हम कुछ एक्सेप्शंस चीज़ें हैं वो भी सीखेंगे, राइट. तो यू आर टेकिंग अ होम लोन ऑफ 40 लाख रुपीज़ एट 7.5% इंटरेस्ट. तो आपके पास टू यूज केस है. तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मुझे होम लोन प्रीपेमेंट करना चाहिए क्या, मुझे उसका SIP म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए. तो अगर आपने होम लोन 40 लाख का लिया है एंड 7.5% इंटरेस्ट, राइट, ये मेरा लोन अमाउंट हो गया, ये मेरा लोन अमाउंट हो गया, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, राइट. तो अब दो यूज केसेस हैं. फर्स्ट इज कि यू कैन ऑफ फॉर अ 15-year tenure एंड EMI वुड बी 37,000 रुपीज़, राइट. सेकेंड में आप क्या करते हो कि आप बैंक को बोलते हो मेरा 25 years का कर दो, राइट. क्योंकि होम लोन का इंटरेस्ट इज जस्ट 7.5, मतलब ये बोला जाता है इट इज़ द चीपेस्ट लोन. मतलब अगर आप पर्सनल लोन का क्रेडिट कार्ड वहाँ पे तो 19-20% इंटरेस्ट भी लगता है, होम लोन सबसे चीप होता है, राइट, 7.5%. सो आपने क्या किया, बैंक को बोला 25 years कर दो, तो आपका जो EMI होगा ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा, दैट इज 29,560, क्योंकि आपने टेन्योर बढ़ा दिया. और आपने जो मतलब एडिशनल अमाउंट था 7,520, वो आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया. एंड हम रिटर्न 11% एज्यूम करेंगे, जो पास्ट रिटर्न में भी आया है, ज़्यादा ही आया है पर मैं कम एज्यूम कर रहा हूँ, राइट. सो केस वन सिंपल, 15-year लोन, EMI वुड बी 37,000, तो टोटल आउटफ्लो मेरा 37,000 का होगा, राइट. सेकेंड यूज केस, आपने 25-year का लोन लिया है जिसमें EMI 29,000 रुपीज़ की है, राइट, एंड जो अमाउंट था एडिशनल वो आपने SIP में डाल दिया, तो टोटल आउटफ्लो दोनों यूज केस में सेम आ रहा है, दैट इज 37,000. बस इसमें आपने क्या किया, आप EMI दे रहे थे, इसमें आप EMI प्लस SIP दे रहे हो. सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन कि होगा क्या, कौन जीतेगा. सो इसका सिंपल सा आंसर है, सो इफ यू एज्यूम 11% CAGR ऑन SIP इन्वेस्टमेंट, 11%, राइट, देन द वैल्यू ऑफ 7,520 पर मंथ SIP वुड बी अबाउट 30 लाख रुपीज़, would be about 30 lakh rupees at the end of the 14th year. This is higher than the outstanding loan of 26.5 lakh at the end of the 14th year. So conclusion kya hai is fight ka, ki obviously mutual fund SIP would be beneficial and isme case study mein humne saaf seekh liya ki jo 14th year pe aapki jo SIP ki value hogi wo 30 lakh rupees hogi और जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 14th ईयर पे वो 26.5 लाख था. तो आप क्या करेंगे, उसको सेट ऑफ कर देंगे, तो भी आपके पास एडिशनल अमाउंट होगा, दैट इज़ 4 लाख रुपीज़, राइट, 3.5 लाख समथिंग आपके पास एडिशनल अमाउंट होगा SIP से जो आपने कमा लिया सेट ऑफ करने के बाद भी. बट इसमें दो तीन आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बैटल क्यों कोई जीता. सिंपल आंसर इज जो हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है फ्रॉम म्यूचुअल फंड फ्रॉम SIP इज ग्रेटर दैन जो आप होम लोन पे दे रहे हो, राइट. होम लोन पे आप 7.5% दे रहे हो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 11%, तो ऑब्वियसली SIP वुड हैव वन, आई वुड से. बट वाई, बिकॉज वी लाइक इसमें मैं आपको वर्किंग्स भी दिखा देता हूँ, दिस इज़ द वर्किंग. तो जस्ट सी, आपने जो होम लोन दिया है उसकी आप EMI भर रहे थे, तो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो 26,51,000 था 14th ईयर पे, पर SIP से आपने कितना कॉर्पोरेट बिल्ड कर लिया, डैट इज़ 30 लाख. तो येस, आंसर इज कि बेटर ऑप्शन इज प्रीपेमेंट की जगह आप होम मतलब एक म्यूचुअल फंड में SIP के इंडेक्स फंड में SIP आप करो. बट द कंडीशन इज कि पहले मैंने ये एज्यूम किया कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आएगा as compared to the interest that you are paying. 11% is greater than 7.5%. But ये भी हो सकता है कि market is too high and आपने तब से investment start किया, right? तो interest आपको जो मिला can be lower as well, right? And क्या पता economy में home loan का interest बढ़ रहा था, तो it can मतलब reverse scenario भी हो सकता है. Second, everyone don't has the patience to hold. वो डिसिप्लिन 14 इयर्स तक एसआईपी को ऊपर नीचे देखना, वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए। जो हमने मतलब देखा है कि आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोल लो, क्या हमारा कैपेसिटी टू होल्ड कम हो जा रहा है। तो आई वुड से कि जिसके पास डिसिप्लिन है, ही नोज अबाउट इक्विटी मार्केट्स, उसी के लिए ही उसको ये करना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करे रादर देन प्रीपेमेंट का। नहीं तो सेकेंड ऑप्शन इज मच बेटर कि प्रीपेमेंट ऑफ लोन करो, एंड जो आपका एक माइंड में भी रहता है कि यार मेरा होम लोन इतना पड़ा है वो भी कम होगा, राइट? तो यहाँ पे साफ मेंशन है कि इफ़ यू हैव अ डिसिप्लिन देन गो विद म्यूचुअल फंड, मत प्रीपेमेंट करो होम लोन की। बट इफ़ यू आर न्यू एंड मतलब आप इतने एवर्स नहीं हो इक्विटी मार्केट से, तो प्रीपेमेंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? सो इसमें मैंने लिखा भी है, इफ़ यू गेट अ हायर दैन 11% एवरेज रिटर्न देन द लोन कैन बी क्लोज इवन अर्लियर, बट सिंस द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज बिल्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ होम लोन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, देर कैन बी सेवरल अदर सिनेरियोस की उल्टा हो गया देन वॉट, राइट? एंड होम लोन से आपको दो चीज़ें और मिलती है जो मैंने इस कैलकुलेशन में नहीं ली है टू मेक कैलकुलेशन ईजी। फर्स्ट इज डिडक्शन, तो जो भी आप प्रिंसिपल प्रीपेमेंट करते हैं उसको आप क्लेम कर सकते हो 80C में डिडक्शन, दैट इज टोटल 1.5 लाख। एंड सेकंड, जो आप इसका इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, लोन इंटरेस्ट पेमेंट अंडर सेक्शन 24, उसमें भी आप 2 लाख रुपीस क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। तो जस्ट टू मतलब इससे भी आपकी सेविंग्स हो रही है, बिकॉज अगर आप 10% 20% ब्रैकेट में आते हैं या 30% ब्रैकेट में आते हैं तो यू कैन इमेजिन कि इस डिडक्शन से हाउ मच यू कैन सेव। बट मैंने ये ATC में इसलिए सोचा कि यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन ELSS एंड NPS एंड ऑल दीज PPF, तो ये वाली डिडक्शन मैंने नहीं ली। एंड सेकंड, आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका भी आप 2 लाख डिडक्शन ले सकते हैं, राइट? तो आंसर इज सिंपल, इफ़ यू हैव द डिसिप्लिन, इफ़ यू आर इन टू द मार्केट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म, देन यू कैन इन्वेस्ट रादर, और आप नहीं तो प्रीपेमेंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? तो ये बैटल अब ख़त्म करते हैं कि बैटल ऑफ इन्वेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर दैन इंटरेस्ट ऑन होम लोन एंड यू हैव द डिसिप्लिन, देन इन्वेस्ट द मनी रादर दैन प्रीपेमेंट। बट इसमें हमने कंडीशंस बात कर ली है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। तो अब समझते हैं स्मॉल ट्रिक्स एंड इंसाइट्स जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो, एंड यू शुड बी आस्किंग दिस एज वेल, राइट? जब आप होम लोन लेते हो, इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में कि एवरीवन विल टेल यू ऑल द फीचर्स, विल ऑल्सो मतलब आपकी वो बात सुनेंगे भी, राइट? क्या नहीं तो आपके पास ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन है ही, तो यू शुड नो अबाउट दिस एंड यू शुड आस्क दिस। सो लेट स्टार्ट विद दिस। सो लिटिल बिट ऑफ स्मॉल ट्रिक्स एंड इंसाइट्स दैट यू शुड नो। सो ये बहुत आपने देखा होगा, आर्टिकल्स भी आते हैं, ये कंटेंट भी बहुत बनता है, टू हाउ टू मेक योर होम लोन इंटरेस्ट फ्री। हाउ टू मेक योर होम लोन इंटरेस्ट फ्री, आंसर इज सिंपल कि म्यूचुअल फंड आप SIP करो विद 0.1% ऑफ योर होम लोन अमाउंट। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास 50 लाख का होम लोन है, तो मैं 5000 रुपीज़ की मंथली SIP करूँ, तो आपका जितना इंटरेस्ट होगा उतना आपका म्यूचुअल फंड SIP इतनी ग्रो हो जाएगी, आप उसको बाद में सेट ऑफ कर सकते हो। तो बेसिकली आपका होम लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, राइट? और ये हमने प्रीवियस एग्जांपल से भी सीख लिया, राइट? देन सेकंड, यू शुड ऑल्सो नो कि मेनी बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया ऑफर कॉन्सेशनल रेट्स टू वुमेन बॉरोवर्स, राइट? तो आप होम लोन अपनी स्पाउस के नाम पे भी ले सकते हैं, तो 5 basis points क्या कभी कभी 0.1% ऑफर मिल जाता है आपको, एंड वी ऑल नो कि 0.1% से लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आएगा। सो दीज आर दी स्मॉल थिंग्स दैट यू शुड नो, राइट? दे कैन बी एडिशनल बेनिफिट्स फॉर वुमेन ऑल्सो इन स्टैम्प ड्यूटी। तो इफ़ यू मेक अ परचेज इन द नेम ऑफ द वुमेन, देन आपको स्टैम्प ड्यूटी में 1-2% डिडक्शन भी मिल जाएगा। एंड लाइक इफ़ योर होम लोन इज, इफ़ योर हाउस इज 1 crore, तो आप 1-2 lakh रुपीज स्टैम्प ड्यूटी में भी बचा सकते हैं, राइट? सो दीज आर द स्मॉल ट्रिक्स, राइट? एंड What I really want you to tell you is a few more insights कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. As per RBI rules, banks will now inform customer about the impact of the interest rate changes on their loan. तो अगर interest rate कभी भी बढ़ता है गिरता है, so they will tell you कि आपके पूरे tenure में क्या आपकी EMI में क्या change आएगा. Second, banks को आपको ये option देना पड़ेगा कि आपको वो EMI increase कर दे क्या tenure बढ़ा दे, right? क्या आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि यार आई कैन नॉट अफोर्ड 40,000 EMI, मेरा जो अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज से हुआ है, तो मैं 50% अपना EMI बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा बहुत अपना टेन्योर बढ़ा लेता हूँ. सो यू कैन ऑल्सो डू दिस. देन थर्ड थिंग दैट यू शुड बी नो इज बैंक हैज़ टू रिटर्न द प्रॉपर्टी पेपर्स विद इन 30 days वंस द एंटायर लोन इज पेड. बहुत बारी क्या होता है, बैंक्स आपको फॉर्मेलिटीज और इसमें मतलब नहीं दे पाते, बट नाउ यू हैव द राइट कि विद इन 30 days में बैंक हैज़ टू गिव यू योर पेपर्स बैक, राइट? देन देर इज़ इंश्योरेंस ऑन होम लोन. सो आई वॉन्ट टू टेल यू मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट मैरिड, राइट? एंड मे बी आफ्टर 1-2 years यू हैड अ बेबी, राइट? एंड आपने होम लोन लिया बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स कि आप फैमिली को अपने घर में लेके जाएँ, राइट? तो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है एंड आपने होम लोन के थ्रू होम लिया, राइट? एंड जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ मिस हैपनिंग हो गई आपके साथ, तो एंटायर लाइबिलिटी विल बी शिफ्टेड टू योर वाइफ एंड योर चाइल्ड, राइट? सो एक इंश्योरेंस भी होता है, होम लोन इंश्योरेंस बोलते हैं उसको. सो यू कैन ऑल्सो लुक इन टू दैट, राइट? कि अगर मिस हैपनिंग हो गई तो बिकॉज यू हैव परचेज दिस इंश्योरेंस, आपकी ये लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं होगी आपके स्पाउस आपके बच्चे के पास. सो मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में अगर आपके पास सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस नहीं है, देन यू कैन लुक इनटू दिस. बट अगर आपके पास सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस है कि आपने टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ा दिया, देन यू शुड इग्नोर दिस. बट यू शुड नो कि अगर स्टार्टिंग में आपका EMI ज़्यादा है, आपका होम लोन ज़्यादा है, तो यू कैन लुक इनटू दिस इंश्योरेंस सो दैट इफ एनी चांस मिस हैपनिंग हुई तो यू डू नॉट हैव टू मतलब योर लव्ड वंस डू नॉट हैव टू सफर. देन बैंक्स ऑलवेज गिव यू टू ऑप्शन, दैट इज फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड, राइट? तो मैं फ्लोटिंग और फिक्स का भी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में भी कि क्या डिफरेंस होता है. फ्लोटिंग इज बेसिकली कि RBI जो रेपो रेट होता है प्लस जो बैंक्स अपना मार्जिन रहता है, कि रेपो रेट फॉर एग्जाम्पल 6%, बैंक ने 2% मार्जिन रखा है तो 8%. जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होगा आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा. बट फिक्स में क्या होता है, बैंक ने बोला कि अब कुछ भी हो, कम हो, नीचे हो, बढ़ जाए, मैं आपसे फिक्स्ड ही लूँगा. देन होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र, व्हाट दिस एनेबल्स इज आपको ये पूछना चाहिए जब भी आप होम लोन ले रहे हो कि ये फैसिलिटी है क्या नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल आपको XYZ बैंक 9% दे रहा है, आपको 2-5 years बाद पता लगा कि यार ये दूसरा बैंक मुझे कम में दे रहा है, तो वाई यू विल नॉट शिफ्ट? यू हैव द राइट टू शिफ्ट. एंड वी ऑल नो कि छोटे बहुत इंटरेस्ट रेट भी कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है. नेक्स्ट इज जॉइंट होम लोन. सो जॉइंट होम लोन इज बेसिकली इफ योर वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग, सो यू कैन टेक अ जॉइंट होम लोन. तो इससे मेजर सेविंग क्या होती है कि ATC में वो भी डिडक्शन ले सकती है, सेक्शन 24 में वो भी डिडक्शन ले सकती है. एंड आप एज दोनों अब मतलब जॉइंट आप होम लोन ले रहे हो, तो आप होम लोन का वैल्यू भी ज़्यादा ले सकते हो, राइट? सो दिस जॉइंट होम लोन इज़ अ गुड थिंग बिकॉज टैक्स एफिशिएंटली आप दोनों क्लेम कर पाओगे, राइट? EMI भी आप दोनों जॉइंटली पे कर पाओगे एंड होम लोन अमाउंट भी आप ज़्यादा ले पाओगे, राइट? फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग में पर दिक्कत क्या है, बिकॉज बैंक्स नो कि ये कितना फ्लक्चुएट होता है. सेकेंडली दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू लॉसेस एनी टाइम. तो जस्ट सी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अभी जो चल रहा है वो 9.5 के अराउंड चल रहा है, राइट? बट उन्होंने सेम चीज़ का फिक्स्ड अगर आप लोगे तो 14% है. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप फ्लोटिंग ही लो बिकॉज फिक्स्ड में कोई सेंस नहीं बन रहा, राइट? मतलब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो भी आप 14 दे पाओगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो भी मतलब 14 से मुझे नहीं लगता कि मतलब 9.15 है और यहाँ पे 14 वो ले रहे हैं, राइट? So you can see the difference ki bank do not want to risk any time. So now coming to the conclusion of this video. So humne sabse important cheez jo battle thi ki home loan mein prepayment karu kya mutual fund mein SIP ya lump sum karu, wo humne case study ke through solve kari. Then humne usme ye sikha ki prepayment is also a very good option. But ha, mutual fund investment over the long term would surpass, but uske liye aapke paas discipline bahut important hai, and prepayment is also a very good option. Second, humne jo ye notion hai ki 25 years ka loan tha aur 12 years ho chuke hai to mera 50% khatam ho gaya, answer is no. Humne isme detail mein sikha, right? Third, ki home loan कैसे एक नाइटमेयर भी बन सकता है. सो जब भी हम होम लोन ले रहे हैं तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास थोड़े बहुत इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए. हमें ये नहीं कि हमारी 40,000 सेविंग्स है, मतलब सैलरी है, और हमने 40,000 का ही ईएमआई बनवा लिया. आंसर इज़ नो, क्योंकि थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट से भी आपकी ईएमआई बढ़ सकती है. क्या आपका होम लोन टेन्योर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है? सो यू शुड बी केयरफुल ऑफ दिस. फोर्थ, हमने छोटी मोटी जो आपके पास राइट्स है, जो आपके आपको पता होना चाहिए, वो सीखा. फॉर एग्जांपल कि आप जैसे ही आपका होम लोन रीपे होता है तो विद इन 30 डेज बैंक हैज़ टू गिव यू योर पेपर बैक. सेकेंड, होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है. थर्ड, हमने उसमें ये सीखा कि बैलेंस होम लोन ट्रांसफ़र क्या होता है. यू हैव द राइट कि फॉर एग्जांपल एक्स बैंक आपको 9% दे रहा है, वाई बैंक आपको 8% दे रहा है, तो यू शुड शिफ्ट, राइट? सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग. और जो बिगेस्ट लर्निंग थी इस वीडियो की वो ये थी कि नो अमाउंट इज स्मॉल व्हेन यू प्रीपे, राइट? So thank you so much. If you have any questions, you can obviously put it in the comment box and I would be happy to solve it. Plus, आपको जो next video देखनी on any financial concept, please suggest करे so that I can make a video on that. Thank you so much. Jai Hind.